ओम शांति। कल सवेरे की मुरली पहुंचो। रूहानियत की शक्ति अब याद आएगी आपको। क्या होती है रूहानियत की शक्ति और बाबा का सबसे गुह्य राज था, रूहानियत की शक्ति से ही बंधन मुक्त स्थिति। और बंधनों में मनुष्य ने स्वयं को स्वयं उलझाया है या किसी दूसरे ने? बोलो, क्या विचार है बहनों का? सबसे बड़ी चीज यही, थोड़े थोड़े दूसरों के भी बंधन हैं, लेकिन वो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण बंधन है, उसमें भी जिम्मेदार हम ही होते हैं। पर अधिकतर मनुष्य अपने बंधनों का जिम्मेदार खुद है। बहुत भाई बहने आते हैं, मैं देखता हूँ सबको साक्षी होकर। कल भी दो बहुत अच्छे भाई थे, बुजुर्ग। मैं जब उनसे पूछ रहा था परिवार की बात, तो कहा हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, अब हम मुक्त हुए। दूसरे परिवार आते हैं, बच्चों का बंधन बहुत बड़ा है। कितने बड़े बच्चे? एक 40 साल का, एक 35 साल का। मैं उनसे पूछा करता हूं, अगर थोड़े फ्रेंडली हैं तो बच्चों ने आपको बांधा है या आपने स्वयं अपने को बांधा है? मनुष्य चाहता है मेरी इच्छा के बिना कुछ काम न हो, बंधन ही बंधन है। और मनुष्य सोच ले, अब मैं 70 साल का हो गया, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो और मुक्त हो जाओ। अगर ये कला किसी ने सीख ली तो वो योगी बन सकते हैं। तो रूहानियत की शक्ति अर्थात, नहीं भाई थोड़ा धीरे करो, रिकॉर्डिंग हो रही है। रूहानियत की शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति। आत्मा जब अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाती है तो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उस शक्ति से तो विश्व बदलता है। बंधन तो बहुत छोटी चीज है। एक स्लोगन, दो चीजें मैं आपको ध्यान दिलाऊं, बहुत सुंदर मैंने पढ़ी मुरली में, आप सब पढ़ेंगे सुनेंगे उनको। वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो तुम्हारी प्रवृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। प्रवृत्ति माना ग्रस्त परिवार। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम्हारे परिवार, तुम्हारा ग्रस्त श्रेष्ठ हो जाएगा। समझने वाले समझ ले इस बात को। ग्रस्त में जो झंझट हैं, उन सबको हम ज्ञानी आत्माएं अच्छी तरह जानते हैं कि अब सबके हिसाब किताब चुकतु हो रहे हैं, सबके संस्कार भी अब अति कड़े हो गए हैं अंत में, और बहुत सारी बातें हैं, विकारों की भी आंधी चल रही है। लेकिन इन सबके बीच रहते हुए यदि वृत्ति श्रेष्ठ बनाएंगे तो प्रवृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। क्या है वृत्ति? पहली चीज, इसी से दूसरी बात भी हम जोड़ देते हैं। रूहानियत भी उससे उसमें आ गई। बाबा की बात आप सुनेंगे, दृष्टि को अलौकिक बनाओ। लिख लो लिखने वाले, बहुत काम आएगी। मन को शीतल करो। बुद्धि की लाइन क्लियर करो, बुद्धि को स्वच्छ करो और मुख को मधुर बनाओ। बस इन चार चीजों में सारी रूहानियत आ गई। जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत करते हैं और जो योग युक्त बहुत अच्छी तरह रहते हैं, उनमें ये चारों क्वालिटी आएंगी। फिर से सुन लें, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्वच्छ बुद्धि, और मुख मधुर मीठा, सॉफ्ट एंड स्वीट। तो अगर ये चारों चीजें आ जाती हैं तो प्रवृत्ति अर्थात आपका परिवार सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसे बहुत भाई बहने आते हैं मेरे पास और मैं उनको ये कहता हूं, जिसके परिवार अच्छे वही बहुत भाग्यवान। ऐसे बहुत बाबा के बच्चों के परिवार हैं, बच्चे अच्छी तरह सेट हो गए, सबके काम धंधे अच्छे या नौकरी अच्छी, माँ बाप के आज्ञाकारी बड़े अच्छे, तो हो गए ना बहुत भाग्यवान। और किसी को एक ही बच्चा हो और बाबा के शब्दों में वो भी धुंधकारी, बाबा बोलते थे सिंधी शब्द है, तो माँ बाप के नाक में दम चलना चाहिए, सुखद सांस आ जाता है नाक में दम। तो इन सब को ठीक करना है तो वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। जो आप में से करना चाहते हैं वो वृत्ति को श्रेष्ठ बनाएंगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे। जब आप अपने परिवार के लोगों को देखो, दृष्टि अलौकिक, क्या जब परिवार के सभी लोगों को देखो, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उनके बच्चे, ये सभी आत्माएं हैं। मुरली में आ चुका एक दो दिन पहले, अलौकिक को देखो, जो नहीं दिखता उसे देखो, जो दिख रहे हैं ये दो नैन तो उन्हें देख ही रहे हैं, नैनों को कुछ करना नहीं है, सबको दिख रहा है। अब तीसरे नेत्र से सबको आत्मा देखो, दादी जानकी कहा करती थी। अब तक चारों युगों तक संसार को दो नैनों से देखा, अब तीसरे नेत्र से देखो। और देखो आपके बच्चे, उन्हें देखो आप, आत्मा है ये सभी आत्माएं अपना अपना भाग्य लेकर हमारे घर में जन्मी हैं। ठीक बात है ना, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सब ज्ञानी हैं। किसी का भाग्य कैसा, किसी के कर्म कैसे, भाग्य कोई लिखा हुआ नहीं लाए, कर्म, किसी ने कर्म बहुत अच्छे किए हुए, किसी के कर्म थोड़े से उल्टे, तो उसके अनुसार उन्हें फल मिल रहा है। एक ही घर में एक बच्चा बहुत सुखी तो दूसरा बच्चा बिल्कुल सुखी नहीं, एक बच्चा देवता तो दूसरे बच्चा व्यसनों में जीवन जी रहा, तो माँ बाप को कठिनाई हो जाती है। वृत्ति बदलो, प्रवृत्ति बदल जाएगी। समझ रही माताएं, दृष्टि बदल दो पहली चीज। अब बदलो भावनाएं, दूसरी चीज है वृत्ति की, भावनाएं बदलो। क्या भावना है आपके अंदर, ये सब बच्चे मेरे हैं? नहीं, वो तो कहने के लिए होता है ना बाबा के। सोच लो भाई लोग क्या कहेंगे, मेरे हैं। नहीं है तो आपके ही, बाबा उन्हें छीन के नहीं ले जाएगा, वो तो आपके ही हैं। पर दृष्टि ऐसी रख दो, भावनाएं ऐसी रख दो। अब एक सुंदर संकल्प, बाबा ने हमें ये फूल दिए हैं, हमें इनको संभालना है, इनमें अच्छे संस्कार भरने हैं, इनके जीवन को सुगंधित बनाना है, इन्हें अच्छे कर्म सिखाने हैं। देखो दो चीजें ध्यान देंगे सभी भाई बहने, बच्चे ऐसा ऐसा करते हैं, मैं बहुत परेशान हूं, एक स्थिति। दूसरे, बच्चे ऐसा करते हैं लेकिन मुझ में उनको बदलने की ताकत है, है या नहीं? है, उसे यूज करो। रोज उन्हें अच्छे वाइब्रेशन दो, पवित्र भोजन खिलाओ, प्यार और स्वमान दो, अधिकार नहीं, डांट डपट नहीं। डांट डपट से कोई सुधरा है आज? है भाई लोग, बताओ, डांटो बच्चों को खूब, सुधरेंगे? कुछ दिन के बाद आपको ही डांटने लगेंगे, भले ही आप बहुत बड़े हैं, पापा हैं उसके। प्यार दो, स्वमान दो, सम्मान भी दो अपने बच्चों को। अच्छी बातें कहो उनसे, उनके ऐसे वैसे नाम न रखो, ऐसे वैसे वचन न बोलो। कहां से हमारे घर में पैदा हो गया, जब से तू आया है कष्ट ही कष्ट हो रहे हमें, बहुत मुश्किल होती है। कई जगह बच्चों की ऐसी स्थिति होती है, बच्चे ने बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, अब नौकरी थोड़ी नहीं मिल रही है, माँ बाप तंग कर देते हैं, हमने पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया, अरे निठल्ला घूम रहा, अब उस बेचारे के हाथ में तो नहीं ना कहीं जाके घुस जाए, मुझे नौकरी दो, होगा ऐसा? प्यार दो, सहयोग दो, राह दिखाओ, मदद करो, अच्छी वाणी बोलो, उसकी उमंग उत्साह को बढ़ाओ, तो देखो फटाफट सब काम होंगे। जिनकी स्थिति अच्छी होती है उन्हें नौकरियां जॉब भी जल्दी बहुत अच्छी मिल जाती है, और जिनके विकर्म सामने दीवार बनकर खड़े रहते हैं, बहुत अच्छे योग्य होते भी उनको नौकरी नहीं मिलती। मेरे पास आती है ना लड़कियां, मैं टॉप मोस्ट हूँ बीटेक में, मेरे नीचे के साथियों को चुन लिया कंपनी वालों ने, मैं रह गई हूँ। ये हो रहा है, बाधा कौन सी है? कर्मों की। इसलिए आपको अपने बच्चों को इस तरह सहयोग देना है। दबाव तो हर व्यक्ति बना लेता है, ये तो बात ठीक है आपने पैसा खर्च किया है, ये भी ठीक है कि आप ये चाहते हैं उनको अच्छी जॉब मिल जाए, परंतु जरूरी थोड़ा ही, अपने हाथ में तो नहीं है ना। एक बच्चा आया भी, माँ भी आई, 3 साल से ये बहुत कंपटीशन दे रहा है, रेलवे में भी दिए, इस फैक्ट्री में दिए, गवर्नमेंट के उसमें दिए, मिली नहीं, नहीं रोकी, लास्ट मोमेंट पे असफल होता है। उमंग बढ़ाना, कल एक लड़का आया परसों, ज्ञान सरोवर की सिल्वर जुबली में मेरे से बात करता रहता था, IAS का कंपटीशन दिया था कलेक्टर बनने के लिए, क्लियर हो गया, मैंने कहा इंटरव्यू, वो भी क्लियर हो गया, देखो कितनी अच्छी बात है। तो शुद्ध संकल्पों से, अच्छी भावनाओं से, अपनी अच्छी मेहनत से सफलता हमारे द्वार पर अवश्य आती है। इसलिए अपनी भावनाओं को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए श्रेष्ठ बनाओ। ये भी नहीं कहना है ये सुधरने वाला नहीं है, बाबा ने बहुत सावधान किया इससे। कौन है हम सभी बताओ, अपने अपने टाइटल, पूर्वज हैं। बहने कौन है सभी? इष्ट देवियां। अब इष्ट देवियां किसी को कह रही हैं ये सुधरने वाला नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा भक्त? इष्ट देवियों के मुख से निकले हुए वचन अब उसे सुधरने देंगे? इसलिए बोल अच्छे बोलने हैं, उमंग देने वाले बोल, ये रूहानियत है ना, यही हमारा ज्ञान है ना। किसने बहुत अच्छा काम कर दिया सब उसकी प्रशंसा तो करेंगे, ये तो कॉमन बात है, लेकिन कोई फेल्योर हो गया हो, किसी को असफलता मिल गई हो, उससे हम कैसा व्यवहार करते हैं, उसको कितनी उमंग दिलाते हैं, उसमें फिर से ताकत भरते हैं, ये ज्ञानियों का काम है। फिर से गिरे हुए को उठाना, बाबा ने पीछे मुरली में कहा, कोई गिर गया लात मार के और गिराओगे क्या? सहारा दिया जाता है, हम सहारा दाता बन जाएं। तो हमारे पास रूहानियत की शक्ति है, दृष्टि को अलौकिक, आत्मा देखना है, और मेरे नहीं बाबा के हैं, ये घर किसका है कहने के लिए नहीं, सोच लो आज, बाबा के घर को अपना यज्ञ मान लो, समर्पित करो सब कुछ उसे, लेके नहीं जाएगा वो आपका घर, उसके पास बहुत सुंदर घर है ऊपर, समर्पित करो अपना घर शिव बाबा को, सब कुछ तेरा और बस हमें आपका घर संभालना है। ये अलौकिकता है, ये श्रेष्ठ भावना है, ये अलौकिक वृत्ति है, ऐसी वृत्तियां हमें बनानी है। आगे बहुत जगह बहनों आ जाओ, ऐसी अलौकिक वृत्ति हमें बनानी है, मन को शीतल करना है, सबसे बड़ा काम, छोटा काम नहीं, ये रूहानियत की शक्ति है। और आत्मा का पहला ही गुण क्या है, मैं आत्मा शांत हूं। अब कहते तो आ रहे हैं लेकिन हूं शांत या नहीं? कई लोग 10 साल से रोज सवेरे उठ के 10-20 बार कहते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, पर शांति दूर है थोड़ी। एक व्यक्ति के बारे में हमारे लोग बड़ा हंसते हैं, उसकी ड्यूटी ऐसी है सवेरे 2 से 5 वो योग करता है और लोग हंसते हैं, 5 बजे जब कमरे में आता है तो लड़ाई शुरू कर देता है, लोग उसकी मजाक करते हैं, कैसा योग करके आए भाई तुम। तो हमें थोड़ा ध्यान देना है, चित्त को शीतल, मैं आत्मा शांत हूं, पवित्र हूं, शक्तिशाली हूं, तीनों को जोड़ दो, पवित्र शक्तिशाली और शांत। जो पवित्र हैं सुख शांति उनके पीछे पीछे चलती है, जो शक्तिशाली हैं विभिन्न परिस्थितियों में भी वह सुखी और शांत रह सकते हैं। ठीक बात है या नहीं? इसलिए तीनों को साथ लेंगे और स्वीकार करेंगे, मैं आत्मा शांत हूं, पवित्र हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। अब इसको रिपीट नहीं करेंगे केवल, इसको स्वीकार करेंगे। स्वीकार ये सरल शब्द है, मैं शांत हूं। तो इसलिए कभी भी अशांति हो, कभी चित्त में क्रोध उठ जाए तो तब तो याद नहीं आएगा, क्योंकि जब मनुष्य को क्रोध आता है तो उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। लेकिन अपने को याद दिलाते रहना है, तुम तो शांत हो, क्रोध नहीं, आत्मा का ये गुण ही नहीं, मैं क्रोध युक्त हूं, मैं रोभ से भरपूर हूं, है आत्मा का? नहीं है। संस्कारों के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात सिखाई थी, अपने से इस तरह बात किया करो, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। बात करो अपने से, तो उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ये मेरी चीज नहीं है, तो जिसको हम रिजेक्ट करते हैं वो हटता जाएगा हमसे। ये बहुत अच्छी विधि है, शाम को सवेरे दोपहर में कभी भी अपने को याद दिलाते चलो, ये संस्कार मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो ये है। बहुतों में एक समस्या है आजकल, फीलिंग ज्यादा आती है, सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव नेचर, नाजुक नेचर, फील जल्दी करते हैं। आजकल ये संस्कार सबसे खतरनाक हो रहा है, सावधान हो आप सभी। आज का ये केस, एक ने फोन किया, मैंने खोला दिन में, मैं खाली था, मुझे उदासी रहती है। मैंने कहा क्यों? पता नहीं क्यों, मैंने कहा मुरली नहीं सुनती? नहीं, रोज मुरली में जाती हूँ, शाम आते आते मन उदास होने लगता है। समझ ले ध्यान से सभी, सेवा करती हो, मैं सेवा भी खूब करती हूँ, सवेरे उठती हो वो भी उठती हूँ, धारणाएं ठीक हैं, सब ठीक हैं, लेकिन शाम होते होते मन उदास होने लगता है। फिर मैंने उससे पूछा, फीलिंग का संस्कार है? है। बहुत इमोशनल हो, भावुक हूँ, जल्दी रो लेती हूँ, अब इनसे बचना है सबको। क्यों? अगर हमारे अंदर ये संस्कार है ना, नाजुक नेचर, बहुत निगेटिव सोचना, जल्दी क्रोध आ जाना, बहुत भावुकता, तो क्या नुकसान होगा? सभी ध्यान से सुन लें, हमारे चारों ओर संसार के वाइब्रेशंस में क्या है आजकल? बोलो क्या है, बोलो, बहुत चीजें हैं, दुख है, निगेटिविटी है, टेंशन है, अपवित्रता बहुत है, डर बहुत है, चारों डिप्रेशन का माहौल है, ये जो सब गंदगी चारों ओर है। अब आप एक चित्र बनाओ, हम जी रहे हैं और चारों ओर ये सब है और हम हैं बहुत नाजुक, तो ये हमारे अंदर प्रवेश करने लगेंगे, स्थिति बिगड़ेगी या बनेगी, बिगड़ती जाएगी, खुशी नष्ट होगी। तो मैंने उसे कहा, देखो आपको अपनी सेंसिटिविटी को, ये जो निगेटिव सोचने की आदत है, इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति बहुतों की हो गई है कि आत्माएं परवश हैं, ज्ञानी ज्ञानी भी वो समझ रहे हैं, जो हमें ये सोच चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, हमें नहीं सोचना है, पर नहीं रुक रहा है। तो मैंने उनको वही बात सिखाई, मैं सिंपल एक बात कराता हूँ जिससे कुछ नहीं होता, तो सवेरे उठकर और सोने से पहले 108 बार लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो थोड़ी आत्मा में ताकत आए, थोड़ी प्योर एनर्जी, शक्तिशाली वाइब्रेशंस आत्मा को मिले, तो बहुत संभलना है सबको। इसलिए सभी एक बहुत अच्छा अभ्यास रोज करेंगे, सवेरे 6 बजे तक, शाम को भी कर सकते हैं, अपने चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल निर्माण करेंगे, सब करें ये काम, शक्तिशाली ओरा, पावरफुल प्रभा मंडल। और इसकी सिंपल विधि है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, 7 बार कर लें, किरणें फैल रही हैं और मेरे चारों ओर लाल किरणों का घेरा बन गया है। रोज एक बार अपने को इस घेरे के अंदर ले आए, अपने को देखें, बीच में बैठी हूँ मैं, बीच में बैठा हूँ, चारों ओर ये शक्तियों का घेरा, इस घेरे के बीच में मैं सुरक्षित हूँ, न ये बाहर की गंदगी आ सकती, न भटकती आत्माएं उधर देख सकती, उन्हें लगेगा आग जल रही है, दूर भाग जाएंगी, और आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। एक बार सवेरे भूल जाओ, दोपहर कर लो, शाम को कर लो, मुरली के बाद, मुरली से पहले, कभी भी 1-2 बार एक शक्तिशाली आभा मंडल बनाना है। इसलिए बाबा ने बहुत ज्यादा बार बोला है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा हमें अपनी शक्तियों की याद दिलाते हैं। तो अपने अपने घरों में रूहानियत का प्रयोग करते हुए सभी अच्छे वाइब्रेशंस फैलाया करें, और वाइब्रेशंस फैलाने की बहुत अच्छी विधि बाबा ने सिखा दी थी अव्यक्त में, बहुत लोग इसको नहीं जानते। एक ही बार बाबा ने बोला है अब तक, मुझे तब का ही याद है, ध्यान देंगे और करेंगे आज से, अपने घरों के वाइब्रेशंस को बदलना है, घर या आश्रम या कोई स्थान, तो इस संकल्प से बैठो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, तो जल्दी उस स्थान का वातावरण बदलता दिखाई देगा। आप दिन में कर सकते हैं ये, जिनके मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है ना, 1 मिनट का भी, 1 मिनट कर लो ये अभ्यास, 1 मिनट इसके लिए बहुत सुंदर समय है, ज्यादा की जरूरत भी नहीं। और 3 मिनट का जब गीत बजता है तो 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लो। अगर आप केवल ट्रैफिक कंट्रोल के समय इतना अभ्यास चालू रखते हैं तो आपका पुरुषार्थ अति सरल हो जाएगा और ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हर 2 घंटे हर घंटे आपका अभ्यास होगा और इससे आत्मा चार्ज होती रहेगी। तो मन को शीतल करना है, बाबा बहुत अच्छे शब्द बोलता है मुरली में, तुम हो शीतला देवी, शीतल देव। कितनी सुंदर दृष्टि से बाबा हमें देखता है, और कितने सुंदर शब्द बोलता है, तुम्हें ज्ञान के शीतल छींटे सब पर डालकर सबकी तपन बुझानी है। तप रहे हैं ना लोग विकारों में, क्रोध में, चिंताओं में, ईर्षा द्वेष में, बदले की भावना में, ये चीजें जला रही हैं लोगों को। हमें शीतल छींटे डालने हैं ज्ञान के भी, और बोलो और श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के भी। हमारे वाइब्रेशंस दूसरों के जलते मन को शीतल कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना है। ध्यान देंगे इस बात पर, परिस्थितियां हमें अपने कर्तव्य न भुला दे। परिवार में बच्चों की या काम धंधों की समस्याएं हमें हमारी मानताओं को भुला न दे, और बहुत सारी चिंताएं और डर हमें हमारी शक्तियों को भुला न दे। इतना ध्यान देना है, हम निवारण करने वाले हैं, हम निवारक हैं, हम समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, हैं या नहीं? समस्याओं से डरने वाले नहीं। बातें हैं, बढ़ती जा रही हैं, और घटेंगी या बढ़ेंगी? ये बढ़ेंगी। उसके कई कारण हैं, और मुख्य कारण ये है कि सभी के किए हुए जन्म जन्म के कर्म अब जागृत हो रहे हैं, अब सब इधर दिमाग में जग रहे हैं। इसलिए संसार में मानसिक समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही, इनको कोई रोक ही नहीं पाएगा। क्या कर्तव्य होगा हम सबका? बोलो भाई, बोलो। हमें सबको वाइब्रेशंस देकर ये जो उखड़ रही है ना चीजें अंदर से, उन्हें शांत करना है, नहीं तो लोग सो नहीं पाएंगे। अचानक ऐसी ऐसी चीजें बढ़ रही हैं। देखो एक अनुभव सुना दूं, अभी मैं कहीं गया था, एक लेक्चरर आए, अच्छे पढ़े लिखे। देखो समस्याएं क्या, कैसे क्या हो रहा है दुनिया में, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, एमएससी फिजिक्स। रात को जब वो सोया था तो पंखे में कुछ घर हो गई, हो जाती है ना कभी लो वोल्टेज आ जाए या कभी तेज आ जाए तो कुछ कुछ हो जाता है ना, और वो उससे डर गया। और नहीं, भूत भी नहीं भूत नहीं, बस वो डर गया अंदर में, और ये डर उसके लिए बहुत खतरनाक हो गया। क्या करूं भाई इसके लिए मैं? मैंने उसे दो चार बातें और पूछ के ज्ञान लिया था, उसने आता कम था। मैंने कहा रेगुलर शुरू करो, समस्याएं भी तो लोगों को अब ज्ञान योग की ओर बढ़ाएंगी ना। जब तक समस्या नहीं आती लोग चादर तान के सोते हैं, वाह आनंद आनंद है। अब थोड़ा समस्याएं सबको जगा रही हैं कि अब जगो, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये भय भी बहुत बढ़ता जा रहा है। अब आपके पंखों में भी घर घर बहुत होती होगी, हमारे में भी होती है, होती है तो क्या हुआ इसमें। लेकिन जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो अंदर ही अंदर भय पनपता है। इसलिए अपनी रूहानियत की शक्ति को बढ़ाएंगे। मैं आत्मा क्या हूँ? मास्टर सर्व शक्तिवान। इन तीनों चीजों को बढ़ाएंगे जो मैंने आपको कही, शांत, परम पवित्र, बहुत शक्तिशाली। ये रूहानियत हो गई, यानी रूह के स्वरूप में, उसकी शक्तियों में, उसके मूल संस्कारों में स्थित हो जाना। रूहानियत, संसार में रूहानियत ही तो नहीं रही ना, देहभान बढ़ गया। देह को ही देखना, देह के लिए ही सोचना, देह से ही प्यार, देह की पालना। आत्मा तो कंप्लीटली भूल गई है ना। बाबा ने आकर ये रूहानी ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया। और ज्ञान ही नहीं दिया, ज्ञान तो ये वेदों में भी लिखा हुआ है, ये दर्शनों में भी है, लेकिन बाबा ने क्या कराया, आत्मिक स्वरूप में स्थित कराने की प्रैक्टिस शुरू करा दी। और छोड़ नहीं रहा हमको, फाइनल करना ही है तुम्हें, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ, आत्मा बन के ही जाना है। पीछे लगा हुआ ना हमारे कौन, स्वयं भगवान, तुम आत्मा, तुम्हें आत्मा होना है। पीछे लगाए तो मैंने बोला सुप्रीम टीचर हम सबके पीछे कितनी मेहनत कर रहा है। कोई दुनिया में टीचर मेहनत करता है, पैसे लेके भी कोचिंग की कोई मेहनत नहीं करता, मेरा काम है पढ़ाना, अब तुम पढ़ो या ना पढ़ो। लेकिन वो जो हमारा सुप्रीम टीचर है भगवान, वो हमारा बाप भी है, वो हमारा कल्याणकारी भी है, वो हमें बहुत प्यार भी करता है, वो हमें बहुत ऊंची स्थिति में देखना चाहता है, वो हमें विश्व कल्याण करने के लायक बनाना चाहता है। इसलिए पढ़ा के छोड़ नहीं देता, इसलिए मैंने कहा हमारे पीछे लगा हुआ, जब तक बन नहीं जाओगे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बनाकर ही जाऊंगा वापिस परम धाम। कितना भाग्य है हम सबका, भगवान हमारी पालना कर रहा है। अगर वो डांटे भी हमें तो कितना अच्छा लगता है, बाबा कह देता है तुम बंदर बन गए, हम खुश हो जाते हैं, वाह बिना पूंछ के बंदर सारे, कितना मजा आता है। भगवान बोलता है बंदर सेना मेरी, कभी शिव शक्ति सेना भी कहता है। तो बाबा हम सबको ये प्यार के शब्द बोलता है ना, मैंने तुम्हें क्या बनाया था, अपने चेहरे तो देखो, आज सबके चेहरे लटके हुए, यहाँ तो नहीं लटके हुए पर दुनिया में आप देखो सबके चेहरों का क्या हाल। बेचारे शाम को आते हैं थके थकाए, न जाने इधर क्या क्या माल भर के लाते हैं, गंदगी क्या क्या, बचना है उससे। मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ, मैं एक उदाहरण दे के कह रहा हूँ आपको। यहाँ राजस्थान में ही एक किसान के लड़के को कैंसर हुआ। अब बेचारा किसान छोटा बच्चा, उसका बच्चों से तो बहुत प्यार है, ये सब कुछ चला जाए भाई, इनका इलाज कराना है। बेचारे ने अपनी जमीन बेची। अब डॉक्टर्स तो आजकल किसी पे दया नहीं करते ना, उन्हें तो 15 लाख लेने हैं तो लेने हैं, खर्च चाहे 2 लाख ही होते हो, बिजनेस हो गया ना बहुत बड़ा। अब उसने अपनी सारी जमीन बेचकर सब पैसा बच्चे के कैंसर को ठीक करने पे लगा दिया, बच्चे की मृत्यु हो गई, कल्पना करो। अब उसने जो वो पैसा दिया है, उसकी भावनाएं उस डॉक्टर के लिए कैसी हैं? मैं नहीं बोलूंगा, समझते हैं ना। अब वो पैसा जिस डॉक्टर को गया है, क्या वो उसको या उसके परिवार को सुख देगा? उसके साथ बद्दुआएं भरी हैं, क्योंकि वही काम वो डॉक्टर चाहता था तो 5 लाख में भी कर सकता था, लेकिन उसको तो 15 ही चाहिए। डॉक्टर कह देते हैं हो कराओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। कई लोग बुरे शब्द बोलते हैं डॉक्टरों के लिए आजकल, ये ऐसे हो गए हैं। तो धन के पीछे मनुष्य ने मनुष्यता छोड़ दी है। कलयुग के अंत में खैर होगा भी क्या, यही हो रहा है। लेकिन हम सब, जो मैं कहना चाहता था आप सबको समझ गए ना, पैसे के साथ बद्दुआएं ना आए घर में, पैसे के साथ सुंदर वाइब्रेशंस भी लेकर आना, भाइयों को कह रहा हूं, और माताएं भी स्वीकार नहीं करना। अगर पैसे के साथ बद्दुआएं आ रही हैं तो उससे आपके बच्चे चरित्रवान नहीं बनेंगे, सुखदाई नहीं बनेंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए धन भी जितना अच्छा आएगा घर में, इसको जब हमारे रमेश भाई पवित्र धन कहते थे, उतना ही परिवारों में सुख शांति रहेगी। मेरे पास एक भाई और आया आज ही सवेरे, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका किसी चीज का, पूछने लगा ज्ञान में आ गया हूँ, अब एक प्रश्न रहता है, ये धंधा सारा ही झूठ का है, करूं या न करूं। मैंने कहा सतयुग में सारे धंधे सत्य के होंगे, कलयुग में सारे ही धंधे झूठ के हैं। क्या करेंगे, झूठ ही झूठ है, पाप ही पाप है, लेकिन हम जितना उससे बच सकें उतना बचें। कई वकील आते हैं हमारे पास, कहा भाई वकालत का पूरा ही धंधा झूठा है, मैं नहीं चाहता इसको करना। अब हम पूछते हैं उससे, सब कुछ उचित है तो उसको कह देते हैं, छोड़ के कोई दूसरा काम कर लो, अच्छी जॉब मिले वो कर लो, क्योंकि कई लोगों को अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो खाती है। जब ज्ञान मिल गया है, हम ये झूठ का धंधा क्यों कर रहे हैं। कोई मर्डर करके आ गया, अब हम उसे बचाना है, इसने मर्डर नहीं किया, हमें पता है, जज को पता है मर्डर इसी ने किया है, और हम बचा रहे उसको सब मिलके, इसने मर्डर नहीं किया है, तो कहा हम ये पाप को बढ़ावा दे रहे हैं। कई आते हैं ज्ञान वाले वकील भाई। तो देखिए, हम सभी को अब अपने अंदर रूहानियत की शक्ति भरनी है, इसलिए बहुत अच्छे रूहानी अभ्यास सभी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया है उसके साथ सहज और सुंदर साधना भी सिखा दी है। यही साधनाएं अब तक बहुत कठिन थी। महर्षि पतंजलि ने राजयोग सिखाया था लगभग 2500 साल पहले, लेकिन वो इतना कठिन सा हो गया कि सन्यासियों में भी लोग उसको नहीं कर पाए, आज तो शायद ही कोई करता हो। और बाबा ने संपूर्ण योग, जबकि उसमें योग था भी नहीं, योग का अर्थ है ना आत्मा और परमात्मा को जोड़ देना, उसमें था ही नहीं वो सब। योग की ये परिभाषा शास्त्रों में भी आ गई, आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। उसने परिभाषा दी थी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है, ये अधूरी परिभाषा थी। तो बाबा ने कितना सहज राजयोग सिखा दिया, कैसे आत्मा होकर मेरे से जुड़ जाओ, शक्तियां प्राप्त करो, आत्मा को पावन बनाओ, पाप कर्मों को नष्ट करो, विकारों को जीतो, इस तरह। ये नहीं कहा जीतो, इस तरह जीतो, मार्ग दिखाया। बिना मार्ग के कोई जीत नहीं सकता था विकारों को। तो हम सभी को क्या करना चाहिए, साधनाओं पर ध्यान देना है, रूहानियत की साधना, अपने को शांत करने की साधना, जो बाह्य मुक्ता है। बाह्य मुक्ता का अर्थ है हम जो संसार की ओर देखते हैं, संसार की ओर दौड़ते हैं, आंखें भी संसार की ओर भटकती हैं, कान भी संसार की इधर उधर की बातें सुनते हैं, ये जो हमारी कर्मेंद्रियों की, हमारी मन बुद्धि की भाग दौड़ बाहर की ओर हो गई है, इसको अंदर की ओर करेंगे, अंतर्मुखी। युगों से दूसरों के बारे में सोचा, अब बोलो अपने बारे में सोचें। युगों से दूसरों से बातें की, अब अपने से और अपने परमपिता से बातें करें। युगों से दूसरों को देखा, अब अपने को देखें, पहले अपने से बात करो। संगम युग पर हम अच्छे से अच्छा क्या करें, चिंतन करना। आज ही लिख लो ये जो कुछ हम कर रहे हैं, उससे और अच्छा क्या करें, और ये समझ लें हम सब जो यहां बैठे हैं उन सब में बहुत कुछ करने की ताकत है। बोलो मैं ठीक कहा है या नहीं। अब तक सोचते थे हमारा भाग्य पता नहीं कैसा है, अब क्या हो गया, भाग्य निर्माण हम खुद कर सकते हैं। हम ये शिकायत करेंगे नहीं हमारा भाग्य कैसा है, भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं, बाबा ने ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसी विधि बता दी है, इस तरह अपने से चिंतन करेंगे। मधुबन में हैं आप, जानते हैं ना कहाँ हैं? कहाँ बोलो, कहाँ? बस कुछ और अच्छी बात कहो, कहाँ हैं? उस जगह पर हम सब बैठे हैं जो कुछ ही साल में, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, विश्व में सबसे महान तीर्थ बनने वाला है, जहाँ आने के लिए भी लोग तरसेंगे। और आप वहां सब कितना रहे हुए हैं? ये जो यहाँ से बाबा की झोपड़ी से और शांति स्तंभ तक की रोड है ना, 12 फुट की रोड बनाओ, इस सड़क पर, इस मार्ग पर, सड़क तो है ही नहीं, सारा ही फर्श है, इस मार्ग पर संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं। आपको पता होना चाहिए, क्यों? स्वयं ब्रह्मा के कदम हजारों बार इधर से चले हैं, आए हैं और गए हैं। वहां जहां से शांति स्तंभ है, वहां तो बाबा खेलते थे, उसे शांति स्तंभ नहीं था, मिट्टी का ही था, खेलते थे बाबा वहां। तो इस स्थान के महत्व को समझते हुए मैंने ये बात आपको क्यों कही, यहाँ एकांत में आपको अति सुंदर प्रेरणाएं आएंगी मन में, इसलिए थोड़ा एकांत लेकर देखो। वहां तक सड़क है ना बाहर, जहां तक मुड़ती है वहां तक तो आनंद है ना, कोई खतरा नहीं। जब हम थे पहले तो वहां जाना भी खतरा होता था, दोनों ओर झाड़ियां थी, भालू इधर उधर ही रहते थे, एवं शांति भवन भी नहीं था। तो अगर कोई टाइम सोचे कि वहां तक चला जाऊं, इम्पोसिबल, सूरज डूब गया फिर कोई नहीं जाता था। अब एकांत का समय है, बाहर भी है इधर भी है, एकांत का फायदा उठाकर अपने से बातें करो, केवल योग नहीं, स्वयं से रूरिहान, अच्छे से अच्छा और क्या कर सकते हैं, अपने परिवार को भी हम किस तरह सुखद सुंदर शांत में सफल बना सकते हैं, ये सब चीजें आपके ही पास हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। अपने अंदर की शक्तियों को, योग्यताओं को, बाबा की जो देन है सबको, उसको पहचान लें, ठीक है? ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।